ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747471।
हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका मेजबान आसिम अली और शो आपका है वही जो हर हफ्ते सैटरडे को होता है, वीकेंड विद आसिम अली, स्पॉन्सर्ड बाय इमीडिएट रिस्पांस सर्विस वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन। तो इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज के बारे में हम आपको पहले बताते चले, हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज और ये जो है सिक्योरिटी कंपनी है। और ये सिक्योरिटी कंपनी दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरिटी कंपनी जो है आईटी जो आज का जदीद सिस्टम जो बनते हैं, जो रिलेट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, तो ये इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज जो है वो उन सबको बरोएकार लाती है और आपको 100% सिक्योर करके और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको अगर किसी भी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए हो, कमर्शियल हो, कॉर्पोरेट सर्विस हो, रिहायशी सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, वेयर हाउस हो, हॉस्पिटल हो या कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रांसपोर्टेशन यार्ड भी हो, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए 6479870002 नंबर फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप कॉल कीजिए इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज को 6479870002। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप जाइए www.irfi.ca और आप अभी उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं, सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और आपको जॉब की अशद जरूरत है और आप चाहते हैं, आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो भी आप इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज में उनको कॉल कर सकते हैं और उनको जॉब के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो भी ठीक है, और अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो भी आपको लाइसेंस भी सिक्योरिटी का दिलवाएंगे और अपने पास जॉब भी दिलवाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे और मुस्तकिल जॉब है, निकालते किसी को नहीं है। तो कॉल कर सकते हैं आप अपनी जॉब के लिए भी 6479870002 irfi.ca इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज। किसी भी किस्म की इमिग्रेशन से मुतालिक अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए और आप चाहते हैं कि अपने अपने वालदेन के लिए सुपर वीजा निकलवाएं या अपने भाई को स्पॉन्सर करवाएं या अपने स्पाउस के लिए उनको स्पॉन्सर करें, तो आप कॉल कर सकते हैं बगैर कुछ दिए और लिए फिलहाल अस्मा साबिर को। कंसल्टेंसी की कोई फी नहीं लेंगी बल्कि आपको वो मशवरा देंगी जो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो कॉल कर सकते हैं अस्मा साबिर को 6472175492 पर। पिज्जा 786 ये मार्कम में, और पिज्जा 786 जो है ये मार्कम में बड़ा ही मशहूर पिज्जा है। ये 2352 मिडिल फील्ड रोड पर है मार्कम में, और यहाँ बड़े लजीज मजे के पिज्जे होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि अब इनका बटर चिकन पिज्जा भी है जो बहुत ही जबरदस्त है इनका। मैं जब भी इनके पिज्जा की बात करता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और इनके बर्गर्स भी हैं और इनके पास विंग्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। आप जाइए अभी और पिज्जा 786 मार्कम में आप अभी उसको सर्च कीजिए और देखिए इनके पास क्या क्या खाने हैं और आप इनसे जरूर मंगवाइए। तो कॉल कीजिए अगर आप मार्कम में 9055547886। अजवा पिज्जा ये थॉर्नक्लिफ में है, और ये थॉर्नक्लिफ में अजवा पिज्जा जो है ये भी बड़ा वहां का मशहूर पिज्जा है, हलाल, बेहतरीन टॉपिंग। और ये दोनों पिज्जा जो सेंटर हैं, स्टोर हैं, ये हमारे बहुत ही अजीजी दोस्त अजमल खलीली साहब के हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह उनका सबसे अच्छी चीज़ ये कि हर चीज़ बड़ी फ्रेश होती है और जब आप खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो थॉर्नक्लिफ में रहने वालों के लिए पिज्जा अजवा पिज्जा और मार्कम में रहने वालों के लिए पिज्जा 786। तो अभी आप कॉल कीजिए 4164232792 पर और जरूर जाइए और जरूर खाइए। वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन, आपके घर में बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी इवेंट हो, वेंटेज आपकी सुनहरी यादों को महफूज करता है फिल्म, वीडियो और पिक्चर की सूरत में। और सबसे बड़ी बात यह, लोग तो शादी की वीडियो बनाते हैं बट वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन शादी की वीडियो को डायरेक्ट करते हैं। आपको बिल्कुल इस तरह से वो वीडियो बना के देंगे जैसे आप कोई ड्रामा फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। उनकी बिल्कुल उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, वही आज के जदीद तकाजों को पूरे करते हुए। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट होंगी। जब आप शादी करते हैं तो शादी एक दफ़ा होती है और आप उसकी सुनहरी यादों को बहुत ज़्यादा अच्छे से महफूज करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा शादी कि वीडियो में ड्रामा भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन आपको डिफरेंट वीडियो करके देंगे। तो अभी आप कॉल कर सकते हैं 7457744104। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं 6477454104। तो वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन से आप कांटेक्ट कीजिए, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज बनाने हैं आपको या फिर आपको एक्टर या मॉडल बनने के लिए कुछ पोजिंग करनी है तो भी आप वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन को कॉल कर सकते हैं और उनसे अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। टीवी कमर्शियल करने हो या सोशल मीडिया कमर्शियल करने हो तो भी आप उनसे बात कर सकते हैं। चर्च, मंदिर और मस्जिद की फंड रेज कैंपेनिंग में भी वो आपका साथ दे सकते हैं, आपको बेहतरीन वीडियोज दे सकते हैं। ऑडियो विजुअल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक ही एक टोरंटो में नाम, वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन। कॉल कीजिए 6477454104। और फिर मैं आपको बताऊं, चाहे शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, आपकी वीडियो बहुत डिफरेंट होगी। तो दोबारा नंबर रिपीट करो 6477454104। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो तो एज यूजल हम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। लास्ट वीक हमारी पॉलिटिक्स का पूरा मैं आपको रिव्यू बताता हूं। लास्ट वीक जो हमारी पॉलिटिक्स रही है पाकिस्तान की, उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, काफ़ी चेंजेस मिली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर अपना बता रहा हूं कि मुझे पता है हमारे यहां पे कॉल्स बहुत लोग करते हैं, मैं बड़ा माजत खुआ हूं जो लास्ट वीक भी कुछ लोगों की कॉल हम रिसीव नहीं कर पाए थे, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया था। और एक साथ जब तीन चार कॉल्स होती हैं तो उसमें से हम एक ही कॉलर को, और हम बदतमीजी नहीं करते कि कॉल ड्रॉप कर दें, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको ये कहते हैं कि भाई अपना सवाल कर दीजिए, हमसे बहस मत कीजिए, हम तो सिर्फ एक छोटे मोटे से प्रोग्राम करते हैं, आप सवाल कीजिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको जो बोलना है, जिसके लिए बोलना है आप जरूर बोलिए, लेकिन शॉर्ट मैसेज दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, ताकि लोगों को मौका मिल सके अपने व्यूज देने का। हमारा जो नंबर है वो है 416-620-1778। तो इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। लास्ट वीक हमारे पास जो रिपोर्ट है जो हमने मुरतब की है कि हुआ क्या है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमजा शहबाज साहब वजीर आला पंजाब नहीं रहे, और बिल्कुल सही हुआ क्योंकि इमरान खान साहब की जीत थी, उन्होंने 15 सीटें जीती थी, उनका राइट बनता था। खामखा अपने आपको गंदा करने की जरूरत नहीं थी, क्यों किया ये एक पॉलिटिक्स है, शायद मुझे लगता है कि यहां गंदे होके भी गंदे नहीं होते लोग, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। तो उनको खुद से हट जाना चाहिए था, उनको बाकायदा तौर पे फिर वही वाली बात है कि वोटिंग हुई, उनको हारे वो, और अब वो पिटीशन दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब और गरीब हंगामा है, मुझे तो यहां ये लग रहा है कि मैं ना मानूं हार वाली कहानी चल रही है, जबकि उन्हें अब साइलेंट होकर साइड पर हो जाना चाहिए। उनकी अक्सरियत नहीं रही तो उन्हें पंजाब की हुकूमत वैसे भी इमरान खान साहब के पास आ चुकी है, तो उन्हें अब चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन बैठेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए यह भी बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान कहां पहुंच गया ये कोई नहीं देख रहा। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि डॉलर 230 पे चला गया था, एक हफ्ते के अंदर अब डॉलर जो है आज कई कई जगहों पर इंटर बैंक में 246 रुपये और मार्केट में 250 तक का भी बिका है। तो सोचें पाकिस्तान कहां जा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, जितने भी लीडर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी तिजोरियां भरी हैं और उनके जो बेचारे आवाम हैं वो, चाहे किसी भी लीडर की बात करूं, वो सब आंखें बंद करके पीछे चले जा रहे हैं। अब सिलसिला यूं शुरू होता है कि अब नवाज शरीफ साहब के आने का होगा, फिर एक और चीज होगी। मैंने एक चीज नोट की, स्पीकर तो बन गए, ठीक है, सुबह भी चला गया, लेकिन मैं एक चीज बड़ा कैटेगरी, मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, मैं ओवरऑल सिनेरियो देख रहा था कि हुआ क्या है ये पाकिस्तान के साथ, ये तीन चार महीने के अंदर हो क्या रहा, क्यों हुआ और हो क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जैसे कि अभी कहा ही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बताना पड़ेगा कि उन्हें किसने कहा कि आके इक्तदार लें और अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, उन्हें किसने कहा था, यह अभी तक जवाब नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कोई ना कोई है पीछे जो जिसने इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया है, अब वो कौन है ये बताना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को, जो कि अभी वो नहीं बता रहे। سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، عمران صاحب کو سائڈ کیا جاتا ہے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف سارے فیصلے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہو گیا. پھر جو ان کو لائے گئے یہ لوگ، نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت آئی، ان سے کچھ سنبھلا نہیں. کیوں؟ چونکہ ان کو یہ شیورٹی نہیں مل پا رہی تھی کہ کیا یہ 1.5 سال ٹکیں گے یا نہیں. یہ اگر ابھی سارے اقدامات کر دیتے اور سب چیزیں بڑھا دیتے جب یہ شروع میں آئے تھے تو ان کو پھر ووٹ نہیں پڑتا. یہ چاہ رہے تھے اسمبلی ڈیزالو کرنا، تو ان کو روکا گیا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں ابھی. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. کیونکہ نواز شریف کا بیان ہے کہ ہم حکومت میں پہلے بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، نہ ہم حکومت لینا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ان کو شیورٹی ملی تو 1.5 مہینہ گزر گیا کہ جی آپ 1.5 سال پورا کریں گے، چلیں جی یہ بھی ہو گیا. پھر جب ان کو شیورٹی ملی، انہوں نے حکومت کرنا شروع کی، آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنا شروع کیا، آئی ایم ایف میں مذاکرات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوا، تو پھر ایک اور چیز چلنا شروع ہو گئی کہ اب آ گیا پنجاب. اب جو پنجاب میں وہ جیتے تو انہیں کہہ دیا کہ آپ کو ڈی سیٹ کر دیں 25 لوگوں کو، اور اس طرح سے کر کے پنجاب کا ایک مسئلہ شروع کر دیا. پھر ایک دفعہ ڈیفیٹ ہوئی نون لیگ کو. پھر آئے بائی الیکشن. بائی الیکشن میں عمران خان صاحب جو ہے وہ 15 سیٹیں لے جاتے، اور اس کے بعد سے دیکھیں ابھی تک پورا ہفتہ 10 دن ہو گیا، عمران خان صاحب ابھی آرمی کے اگینسٹ یا عدلیہ کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے. یہ بھی ایک آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب 15 سیٹیں جیت لیں تو پھر پنجاب میں اسپیکر کا اور وزیر اعلی کا الیکشن جو کچھ بھی ہوا تو اس کے اندر ان کی اکثریت آ گئی اور یہ لوگوں نے حکومت بنا لی پی ٹی آئی نے. اب جیسے ہی پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تو فیڈرل کی حکومت ہو رہی تھی کمزور، لیکن اچانک سے 11 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں. اب اگر باپ پارٹی بھی ٹوٹ کر آ جائے، ایم کیو ایم بھی ٹوٹ کر آ جائے، تو بھی پی ٹی آئی مرکز میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے 11 لوگ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے الیکشن بائی الیکشن کب ہوں گے یہ ابھی نہیں پتا. اگر الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی لڑیں، الیکشن بائی الیکشن ہوتے ہیں، کیا پھر پی ٹی آئی واپس جائے گی؟ اگر جائے گی تو یہ استعفے واپس لے لیتی تو زیادہ بہتر تھا. ابھی یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ شاید کچھ اور استعفے بھی منظور ہو جائیں تاکہ اس طرح سے کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کے اس حکومت کو ختم نہیں کر سکتی. تو جو پنگ پونگ چل رہا ہے نا، مجھے سب لوگ یوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے پولیٹیشین چاہے وہ کوئی بھی ہے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف کی پارٹی، مسلم لیگ نون یوز ہو چکی، جو کہ یوز ہو کے آج وہ کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کے سامنے، ملک کہاں تک پہنچ گیا. یہاں عمران خان صاحب سے بھی کچھ وعدے کرا کے ان کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. یہ کون ہے وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں؟ اب ان کو مرکز میں آنے نہیں دیں گے پنجاب اور وہاں تک، اور اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں تو پنجاب کی ادھر کی، اگر یہ حکومت توڑ دیتے ہیں تو پھر بائی الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے جب تک عدم اعتماد نہیں ہوگی تو پھر سینٹرل گورنمنٹ چینج نہیں ہوگی. تو ایک کچھ عجیب سا چل رہا ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سر، نام بتائیں گے؟
جی میرا نام آفتاب ہے.
جی آفتاب بھائی،
جی میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماما 70-75 سال سے چل رہا ہے، جب کا یہ مادر ملت کو شہید کیا تھا نا انہوں نے.
جی 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 جی.
ان کو نام نہیں بتاتا. اب دیکھیں انہوں نے خود گورنمنٹ جو نا الیکشن ہی کرائیں گے، یہ بعد میں بول دیں گے وہ ہمارے ساتھ زیادتی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی.
جی.
ہر اینکر سے لے کر، ہر جج سے لے کر، ہر بندہ، آپ نے پشاور میں دیکھا ٹرک وہ سجا ہوتا تھا وہ بچوں کے ساتھ، اسی طرح یہ جب باجوا یہ ٹرک کے ساتھ سجا ہوا، یہ یقین کرے باجوا امریکہ کو بول رہا ہے کہ مجھے پہلے ریلیز ہو جائے نا فنڈ.
میں اس پہ آ رہا تھا، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ابھی باجوا صاحب کا بھی جو بیان آیا ہے کہ وہ امریکہ سے فنڈ مانگ رہے ہیں.
یہ اس لیے بیلجیم چلے جانا ہے، کوئی جنرل پاکستان میں نہیں رہتا، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں.
جی مجھے پتا ہے، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی جنرل وہ جب تک آن ڈیوٹی ہوتے پاکستان میں ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے. جی جی.
عمران خان 220 سیٹیں جیتا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے یہ ڈرامے کرتے ہیں. الیکشن پاکستان میں مادر ملت کو انہوں نے راتوں رات مارا ہے اور قوم خاموش رہی. اس وقت تو کچھ ہوتا تھا نا، اب نہیں ہو سکے گا. میں جتنا بولتا ہوں
ٹھیک ہے سر.
باجوا مردہ باد، پاکستان زندہ باد.
सर मैं फिर ये बोलूंगा, इन साहब ने नारा लगा दिया, बहरहाल मैं इसे कंडेम करता हूं और मैं अपने चैनल पे अपने शो में इस तरह की गुफ्तगू कोशिश करेगा, जो भी मुझे कॉल करे वो किसी को मुर्दाबाद और जिंदाबाद ये हमें नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं उसका हिसाब वो देंगे और अल्लाह ताला है वो हिसाब लेगा। उन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-620-1778 पर। दूसरी चीज, बाजवा साहब ने अभी IMF वालों को कहा कि जी फंड रिलीज करें, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी बड़ी माशी मुश्किलात में घिर चुका है। इंपॉर्टेंट ये कि क्या फॉरेन फंडिंग केस को जितनी हवा दी जा रही है, अब हो ये रहा है जो मैं जब से देख रहा हूं कि एक तरफ इनको खुश किया जाता है, एक तरफ उनको खुश किया जाता है, फिर एक तरफ इनको खुश किया जाता है, फिर एक तरफ उनको खुश किया जाता है, फिर एक तरफ इनको किया जाता, तो यूं ही पिंग पोंग बॉल चल रहा है। और अब आ गया है फॉरेन फंडिंग, पंजाब की गवर्नमेंट दी, सेंट्रल की गवर्नमेंट बचाई, अब आ गया फॉरेन फंडिंग। आपको क्या लगता है कि फॉरेन फंडिंग में क्या फैसला आएगा? आपकी जो भी राय आप हमें कॉल कीजिए और जरूर बताइए 416-620-1778। फिर मैं आपको अपना तजिया दूंगा कि फॉरेन फंडिंग में जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिनको देखा जा रहा है, जिनको समझा जा रहा है, और खास तौर पे वो जो नकवी साहब एक हैं जिनके बारे में अमेरिका में 290 ईयर्स उनको जेल हो सकती थी, उनको वहां, और उन्होंने सबसे पहले नंबर जो दिए वो इमरान खान उनके दिए, तो ये सब चीजें कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, और अब इसके तहत अगर ये प्रूव आ जाते हैं, जैसे लंदन के अखबार ने भी ये सारी चीजें स्टोरी शाये की, पूरी स्टोरी है वो, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक चीज को खत्म करते हैं और दूसरी चीज को फिर शुरू करते हैं? अगर ये सब चीजें थी फॉरेन फंडिंग में, तो फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल से चल रहा था। ये आई थिंक इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे जिसको साइड या आगे पीछे करना हो। अब देखते हैं फॉरेन फंडिंग का क्या फैसला आता है। आपकी नजर में जो भी आपके व्यूज हैं फॉरेन फंडिंग के हिसाब से वो जरूर हमें बताइए। आप कॉल कर सकते हैं 416-620-1778 पर। बहुत सारे लोगों ने, तज्जिया निगारों ने बहुत सारी बातें की, जिसमें एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूं कि हमारे हुक्मरानों को हमारी आवाम का दर्द नहीं है। बात बहुत सिंपल सी है, क्योंकि उनको यह एहसास नहीं हो रहा कि पाकिस्तान किस मुश्किल में जा रहा है। कोई किसी के लिए नहीं होगा, अगर कोई जनरल यहां नहीं रहता तो एट द एंड आप ये जरूर देखिए कि बाकी जितने लोग हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे भी यहां नहीं होते, सबके बच्चे बाहर पड़े होते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी गरीब माँ बाप की औलाद, हम जो बाहर नहीं जा सकते वो इसी पाकिस्तान में होते हैं और अपनी किस्मत और अपनी तकदीर को रो रहे होते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान से बेहतर था कि मुल्क किसी का गुलाम हो जाता, शायद गोरों का हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, जहां टैलेंट की कदर होती है, जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, जैसे हम यहां कनाडा में बैठे हैं, यहां इंसानियत की बड़ी अहमियत है, या इंसान को इंसान समझा जाता है। और हम जब अपनी कंट्रीज में जाके देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर कंट्री में, तो हमें बड़ा अफसोस और दुख होता है कि वहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अरे यहां तो कुत्ते की बड़ी वैल्यू है, आप कुछ करके तो देखें किसी कुत्ते के साथ, बड़ी वैल्यू है यहां पर। लेकिन हमारे यहां हम उन यहां के डॉग से भी बुरे हैं जो हम अपनी कंट्री के अंदर हमारे साथ हो रहा है, कि हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट दो, मिनिस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ इनको, और उसके बाद फिर भूल जाओ, फिर आप उनसे मिलने की कोशिश करें वो आपको मुलाकात भी नहीं कराएंगे कभी। कोशिश और दुआ यही है कि पाकिस्तान के हक में जो सबसे बेस्ट हो वो हो, लेकिन अभी जो हो रहा है इसमें भी अल्लाह की को मसलहत है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा, चाहे इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो। मुझे तो ये लगता है कि कोई है जो इन सबको बना रहा है, अपने मफाद में खेल रहा है। वो कौन है? जैसे इन्होंने कहा बाजवा साहब, मैं बोलता हूं नहीं, ये उनके उनसे उनके बस से भी ऊपर की कहानी है, ये उनसे भी शायद वो भी बन जाते होंगे लोगों के हाथों, लेकिन कहानी कुछ और है। क्योंकि सिस्टम अगर आप देखें, अभी हर किसी को हर तरफ से पैक कर दिया गया है, गवर्नमेंट चेंज करा के इनको फंसा दिया, इनकी मकबूलियत में कमी हुई, ये इलेक्शन में जा नहीं सकेंगे, गवर्नमेंट खत्म करके इमरान खान की मकबूलियत को उरूज दे दिया, जो कि डाउन थी उसको ऊपर कर दिया, लेकिन उसको पंजाब देके छोड़ दिया और उनके जो कई महीनों से जो इनके इस्तीफे पड़े थे उसमें से 11 अभी और 11-12 फिर इस्तीफे दे देंगे ताकि सेंट्रल की गवर्नमेंट गिरा ना सके, बाप या एमकेएम कोई भी साथ आए। ये सोचे, इनको यहां फंसा दिया, उनको वहां फंसा दिया, नवंबर की तैनाती के लिए अब कोई भी गवर्नमेंट होगी जो ये कहेंगे वही होगा। आई डोंट नो ये सही है गलत है, लेकिन मुझे जो लग रहा है तो होगा क्या। और कोई बात नहीं कि अभी आगे चल के जो बाय इलेक्शन इस पे 11 होंगे, हो सकता है वो नून लीग को क्लीन चिट मिल जाए और नून लीग जीत जाए, और जब नून लीग जीत जाएगी तो वो सीटें भी नेशनल असेंबली की नून लीग के पास आ जाएंगी, उनको फिर कोई नहीं हिला सकेगा। फिर फॉरेन फंडिंग केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इमरान खान साहब फिट हो जाएं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा। जितने शवाहिद ये दिखा रहे हैं बता रहे हैं, जो सच हैं झूठे हमें नहीं पता, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को फिट किया जाएगा और उनको दीवार से लगा दिया जाएगा और उनको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जबकि वो होंगे नहीं, लेकिन कोशिश अगले 5 साल ना आने के लिए उनको इसी तरह करना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है। अभी आप कॉल करें हमें 416-620-1778 पर, और हमसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं फॉरेन फंडिंग के लिए या पाकिस्तान की बदहाली के लिए। बड़े अफसोस की बात है, दिली तकलीफ है कि पाकिस्तान इस हाल में पहुंच गया है जहां लोगों को खाने को नहीं है, पहले ही नहीं था, अब और ज़्यादा लोगों को खाने को। पहले लोअर क्लास अंडरलाइन चली गई थी, अब मिडिल क्लास लोअर क्लास में तब्दील हो चुकी है। चलें, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए दर्द है, पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, तो ये सारी बातें करते हैं। और इतनी दूर बैठ के जहां हमें सब कुछ मुहैया है, ना लाइट जाती ना कोई मसला होता है, उसके बावजूद हमने अपने शो को पाकिस्तान के लिए रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि हम बता सकें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हम भी नहीं हैं। हमारे पास एक और कॉलर है जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी, क्या नाम है सर आपका?
अब्दार मेरा नाम है। क्या हाल है
जी अब्दार भाई, कैसे हैं? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप
जी बताइए, आपका क्या राय है, क्या होगा फॉरेन फंडिंग में?
कुछ भी नहीं होना, क्या है वो उसमें तो जो उसको पेश किया गया है, पहली बात तो यह कि वो आरिफ नकवी साहब पाकिस्तानी है, तो ये फॉरेन फंडिंग तो रही नहीं।
कराची जी, कराची के बिजनेसमैन है
जी जी, वो जी मतलब ठीक है। सेकेंडली आपको पता है कि यहाँ कनाडा में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करती हैं।
जी बिल्कुल करती हैं जी जी।
इसमें ऐसी उस हिसाब से कि जी सिर्फ इमरान खान का नाम है, क्योंकि उसी आर्टिकल में मियां साहिबान का भी नाम है, तो वो उस हवाले से। और सेकेंडली ये इतने सालों से जो चल रहा था और अभी इसको दोबारा लाए गए, क्योंकि बाकी कार्ड फेल हो गए तो इस कार्ड को अब दोबारा लाया गया, तोशा खाना गोगी और ये सारा फ्लॉप होने के बाद अब इसको इन्होंने मार्केट पे लेकर आए, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। अगर इसका फैसला होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। और उसमें दूसरी बात ये है कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन हुई थी वो थ्रू बैंक थी और पाकिस्तान में पैसा गया था, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था, पाकिस्तान में गया था, तो ये तमाम उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी। अगर मैंने चोरी की है या मैंने गलत तरीके से किया है तो मैं उसे बैंकिंग थ्रू बैंकिंग नहीं।
अच्छा, अभी
तो,
एक हफ्ते से इमरान खान साहब भी कोई ऐसे बयान नहीं दे रहे। आरिफ नकवी साहब के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं जानता भी हूँ, साथ हमारे थे, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल किसी के अगेंस्ट बयान नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि वरना जिस तरह से इमरान खान साहब तकरीरें कर रहे थे, बयान आ रहे थे, आजकल नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है, क्या कुछ
नहीं उसमें? बहरहाल पहली बात है
ना, आर्मी के लिए आ रहे हैं ना अदलिया के लिए आ रहे हैं ना,
बात सुने, आर्मी के लिए कभी उन्होंने उस तरीके से नहीं कहा, जैसे
ना कहा कि वो न्यूट्रल है या जो भी है, वैसी भी बात नहीं हो रही ना, वो वैसी भी बात नहीं हो रही आजकल, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ नहीं, वो अच्छी बात है ना कि अगर नहीं हो रहा तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो जी नहीं हो रहा,
और जब हो गया तो क्या करना चाहिए?
नहीं, अगर हो गया तो अगेन उसमें अगेन उनके सपोर्टर्स में भी यही होता है कि जी वो करते हैं, वो बात करते हैं, कोई पता नहीं, लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि वो मैं दूसरा लगा के सपोर्टर बन के तो मैं कर सकता हूँ। तो बाकी ये जो फॉरेन फंडिंग है,
तो आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग में कुछ भी नहीं होगा और इनको मतलब क्लियर हो जाएंगे ये?
क्लियर नहीं होंगे।
अच्छा, मतलब ये लटकता रहेगा अभी मामला,
लटकता रहेगा। और उसमें अगर दूसरों के भी
अगर गॉड फॉरबिड, मिसाल के तौर पे, अल्लाह बेहतर जानते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग में साइड कर दिया, फिर क्या होगा?
नहीं, इस तरह नहीं साइड हो सकते।
अच्छा।
इतना आसान नहीं है। और
क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे तो देखिए अभी भी दोनों की तकरार, वो तो इलेक्शन कमीशन पे तो उन्होंने कल भी आज भी बयान दिया कि ये लोग जाके मिल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का आज आया कि सबसे ज्यादा तो पीटीआई के लोग हमसे आके मिले और वो अकेले में मिले, जबकि नून लीग के तो सब साथ आए। तो इलेक्शन कमीशन से जो इनकी टसल है, आपको लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन इनके अगेंस्ट फैसला देगा?
नहीं, इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि
तारे कहीं और से हिलती है।
हाँ जी। और दूसरा ये जो वो आपने कहा था कि पॉलिटिशियंस को दर्द नहीं है, लेकिन कुछ हमारे इदारों में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा दर्द है, जिनका डोमेन नहीं भी है, फिर भी वो जाकर वहां से इमदाद मांग रहे हैं। तो वो आपको देर आर नो फ्री लंचेस, तो अगर इमदाद देंगे तो फिर कुछ दो कुछ लो, और उसके चक्कर में होगा। और इसी स्टेज पे हमें लाना चाह रहे थे, वहां तक हम पहुंच गए हैं। और ये मतलब ये
अगर आपकी बात को मान लेते, ठीक है कि कुछ दो कुछ लो होगा, अगर इमदाद नहीं मिलती तो पाकिस्तान जिस डगर पे चल निकला है, जहां पहुंच गया है, गलत या सही पीछे को छोड़ देते ना, जहां पहुंच गया है, तो ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, जो अभी लग रहा है, ठीक है ना, अगर इमदाद नहीं मिलती। और अगर इमदाद मिल जाती है तो फिर हमें कुछ दो कुछ लोगों की सियासत करनी पड़ेगी। तो आपकी नजर में क्या बेहतर है, कोलैप्स करवा दें या फिर इमदाद लेके थोड़ा बहुत उनको एंटरटेन कर लें?
इमदाद तो मतलब वो कोलैप्स वाला काम नहीं होगा।
नहीं, अगर इमदाद नहीं मिली तो हो जाएगा कुछ अरसे में, कुछ अरसा है, थोड़ा सा है, हो जाएगा।
इमदाद वो देंगे किसी भी तरीके से।
हाँ,
देंगे।
अगर ये है श्योरिटी के इमदाद देंगे तो फिर झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है।
आपको अगर वडेरा सिस्टम का पता हो तो वो अपने जो वहाँ पे वर्कर होते हैं ना, उनको वो गंदम जरूर देते हैं। मकसद ये है कि गंदम देते हैं और बाकी चीजें वो उस पर निगोशिएट जैसे भी करते हैं, लेकिन गंदम देते हैं ताकि वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा तो उसका खून हम और खून
चूस सकते हैं, निकाल सकते हैं। चले अब, थैंक यू मच।
आपने दूर रखेंगे,
जिंदा आप कहते हैं कि पाकिस्तान को जिंदा तो थोड़ा बहुत देते रहेंगे ताकि वो जिंदा रहे, कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन
एक छोटी सी चीज, उसके बाद फिर आप दूसरों को भी मौका दीजिएगा। ये सूडान की एक मिसाल है, सूडान ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि 2020 में उन्होंने इसराइल को भी मान लिया, और बाकी भी अब वो काम वही कर रहे हैं जो वो कहते हैं वो कर रहे हैं। तो ये बहाल है,
बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई देखे, जब कोई पैसा देता है, जब कोई एहसान करता है ना, तो उसका बदला तो लेता है। ये बात तो फैक्ट है, ये तो फैक्चुअल है। ये सब कंट्रीज में नहीं है, पूरी हमारे ह्यूमन नेचर में भी, हम भी अगर कहीं कुछ किसी पे एहसान करते तो उससे एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि जो अब हम बोले वो करें, और लोग करते हैं यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है। थैंक यू अमर जी, थैंक यू अबरार भाई। अबरार भाई हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार भाई ने बहुत सही, अच्छी अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें की। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि अगर इसलिए कह रहा हूँ, फ्यूचर का प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, और खासतौर पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको पाकिस्तान का दर्द था, दर्द है, और इसलिए उनका डोमेन ना होते हुए भी उन्होंने अमेरिका से इमदाद की बात की है। एक तो ये नैरेटिव है, पीटीआई की तरफ से यह है कि उनका राइट नहीं बनता, जो कि वो खुद भी कह रहा है राइट नहीं बनता, लेकिन जब आप इमदाद लेंगे तो आप फिर उनको बहुत कुछ देंगे भी। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई फ्री फंड में काम नहीं करता। पाकिस्तान अभी जिस सिचुएशन में, उसको इमदाद की अशद जरूरत है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा एग्री तो नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर वो कह रहे हैं अबरार भाई, तो हो सकता है कि वो जिंदा तो रखेंगे पाकिस्तान को, लेकिन मुर्दा हालत में, तो हो सकता है ऐसा हो। वरना मुझे लगता है कि अगर इमदाद नहीं ली गई तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। मेरा भी इस सारी बात के बाद एक वो है, सजेशन भी और एक सोच भी है, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आपने कॉल करना है कॉल कीजिए 416-620-1778। मेरा नजरिया भी है कि अगर हमें अमेरिका को डिफीट देना है, अगर हमें अपनी कंट्री को नॉर्मल और बहुत अच्छे से करना है, तो हमें माजी को भुलाकर थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि माजी में रहते हुए इतने फसाद, इतने फड्डे हो चुके हैं इन सब लोगों के आपस में, पॉलिटिशियन के, कि पाकिस्तान आज बहुत ही गड्ढे की तरफ जा चुका है और हो कुछ भी नहीं रहा। इमरान खान साहब बिल्कुल सही हैं, मान लेते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। नवाज शरीफ वाले बहुत ज्यादा, शरीफ फैमिली बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा उनके अगेंस्ट। जरदारी साहब खरीदो फरोख कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे कानून, हमारा सिस्टम, उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कम से कम ये कर लें, जो हो गया मिट्टी पाओ। आज देखो, आज ऐसी जगह पे एक साल के लिए, छह महीने के लिए, दो साल के लिए, वॉट एवर टाइम सिटिंग करें। पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के पास है, वो अपनी हुकूमत को बेहतरीन तरीके से चलाएं, लोगों को सहूलतें दें, और वहां से जितना गंदम ये चीजें उगती है, अच्छा है, पाकिस्तान का फायदा हो। फेडरल में शरीफ फैमिली की हुकूमत है, फेडरल में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। नए नए प्लान्स लेकर आएं, प्लानिंग करें, नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएं। सिंध गवर्नमेंट में जरदारी साहब सिंध हुकूमत में है, उनको चाहिए कि सिंध हुकूमत के लिए एक आइडियल बनाएं। सब अपने अपने डोमेन में रहते हुए साइलेंस करें, जहां जो है अभी वहीं फ्रीज करें, और अपने अपने डोमेन में रहते हुए वो काम करें जो कर सकते हैं। फिलहाल यही एक वो चीज है जिससे कि पाकिस्तान बच सकता है। चले मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक दफा फिर आपसे जिक्र करता चलूं। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज। इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज सिक्योरिटी फर्म है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। बेहतरीन सिक्योरिटी फर्म है, कमर्शियल, कॉर्पोरेट सर्विस, रिहायशी सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वेयरहाउस, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रांसपोर्टेशन यार्ड। आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, जदीद तरीन सिक्योरिटी, तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बताता हूं, 6479870002। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6479870002, और वेबसाइट इनकी www.irfi.ca। और अगर आपको जॉब चाहिए और आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, बस जॉब नहीं है, तो भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ये आपको लाइसेंस भी दिलवाएंगे, जॉब भी करवाएंगे, और जो दूसरे लोग आपको पैसे देंगे सिक्योरिटी जॉब में, उससे अच्छे पैसे भी आपको देंगे। तो आप अभी कॉल कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए भी, 6479870002, ACA Emergency Response Training, affiliated to Red Cross Canada। हमें यकीन है कि हम आपको कम से कम प्राइस पे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लाइफ सेविंग फर्स्ट एड CPR ट्रेनिंग करवाएंगे। ACA Health Ontario COVID-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रेनिंग करवाते हैं। ग्रुप डिस्काउंट भी है, कम से कम पांच या उससे ज्यादा लोगों पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए 6079670001, पर। इमिग्रेशन से मुतालिक आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल करना है, बात करनी है, तो आप बात कर सकते हैं unifyimmigration.ca से, और वहां आप बात करेंगे असमा साबिर से। आपको कोई पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ उनसे मशवरा करना, जो बेस्ट आपके लिए होगा वो असमा साबिर आपको सजेस्ट करेंगी। तो कॉल कीजिए 6072175492। पिज्जा 786, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप मार्कम में रहते हैं तो जाइए, जाके पिज्जा 786 पे जाइए, और वहां जाके आप सिर्फ पिज्जा ही नहीं, और भी मतलब जैसे उनके विंग्स हैं बहुत अच्छे हैं, बटर चिकन पिज्जा बहुत अच्छा है, चिकन टिक्का पिज्जा बहुत अच्छा है, उनके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप जाइए पिज्जा 786, ये है 2352 मिडिल फील्ड रोड पर मार्कम में, और नंबर इनका है पिज्जा 786 का नंबर है 9055547886। अगर आप मार्कम में, हलाल पिज्जा है, बेहतरीन टॉपिंग है, बटर चिकन पिज्जा भी है, सारी चीजें, तो आप जाइए जरूर खाइए। और अगर आप थॉर्नक्लिफ में हैं तो वहां पे है अजवा पिज्जा, 416-423-2792। और ये दोनों जो पिज्जा सेंटर हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अजमल खलीली साहब उनके हैं। तो आप जाइए अजमल भाई को बोलें कि अजमल भाई सलाम वालेकुम, हमें पिज्जा चाहिए, वो फिर आपको ऐसा बना के देंगे जबरदस्त फ्रेश पिज्जा। तो ये थे पिज्जा 786। तो मैं आपको आज थोड़ा सा उदासी भी है और पाकिस्तान को लेकर थोड़ी सी परेशानी भी है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया, पूरा लास्ट वीक मैं सोचता रहा कि हो क्या रहा है। मैंने जितने सारे प्रोग्राम किए, मैं अभी भी ये बात कहता हूं कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप कभी कहीं ना बायस्ड होके इमरान खान के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूं हाँ शायद होता हूं सम टाइम। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी जो टूट गई। कुछ भी नहीं हो रहा, उनके होने से उनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक होता है ना, आदमी मानता है कि यार ये आएगा तो सब सही कर देगा, वो आता है वो सही करने के बजाय उससे कुछ हो ही नहीं। मतलब ठीक है उनके उनको नहीं मिला इक्तदार सही से, जो भी हुआ एक्स वाई जी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत डिसहार्टेड था। फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, तो ये लगा कि शायद ही कुछ बेहतर कर जाएंगे, तजर्बेकार लोग हैं, तो इन्होंने और पट्ठा बैठा दिया। अब हम कहां देखें, किसको देखें और कब तक? जैसे कि उन साहब ने बिल्कुल सही बोला कि 75 साल से चला रहे, कब तक यही देखते रहेंगे कि एक आता है उसको बुलंदी पे लेके जाते हैं, फिर उसको ऐसा गिराते हैं कि वो सबसे बेकार हो जाता है, फिर दूसरे को चढ़ा देते हैं, फिर उसको गिराते हैं, फिर तीसरे को चढ़ाते हैं। अगर आप 75 साल तारीख में देखें तो क्या हो रहा है? यही हो रहा है, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं। ये नहीं होना चाहिए। और कुछ फेवरेट्स हैं जो कभी बदलते ही नहीं हैं, जो हर गवर्नमेंट में साथ होते हैं, वो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी थे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी, आगे भी जो गवर्नमेंटें बनेंगी उसमें वो होंगे ही होंगे। तो बहरहाल अफसोस है, तकलीफ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदाबाद रखे। और कोशिश यही है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-620-1778 पे। और इसी के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा होगा एक दिन। हम आपको सुनाते हैं एक मिली नगमा। हमारे पास एक कॉलर आ गए तो खुल गया, हमारे पास एक कॉलर आ गए तो हम बात करते हैं। हेलो, ओहो कॉल ड्रॉप हो गई है। चले गाने पे दोबारा चलते हैं। कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है सर, दोबारा कर लें कॉल।
लड़ी में चलता रहे ये कारवां,
ये कारवां।
जी जी पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान।
हमको भी अपने हर मान से प्यारा लगता है, तारा लगता है,
लगता है। पाकिस्तान
जी। तो दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। बहरहाल आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल करें। आज इत्तेफाक की बात है कि कॉल्स आ रही हैं, लेकिन एक दो कॉल्स कट भी गई हमारी, क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन शायद आप लोग भी दुखी होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि कब तक हम इसको बुरा उसको अच्छा कह कह के थक गए शायद। अब जो भी हो रहा है वो बस हो रहा है। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ लगी कि 186 रुपीस पाकिस्तानी एक कैनेडियन डॉलर हो गया, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हैरानगी होती है कि क्या होगा, हम डॉलर में कैसे मतलब इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट बंद कर दिया, ऑफकोर्स इंपोर्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि हम कितना कितना कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल बड़ा दुख और तकलीफ है आज मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा है और अफसोस भी है। लेकिन बड़े मज़े की बात, ये पॉलिटिशियन अभी भी लड़ रहे हैं आपस में। अभी देखे ना, हुकूमती लोग अगर जाके इलेक्शन कमिश्नर से मिल लिए तो उस पर एक बहुत बड़ा पीटीआई ने हंगामा खड़ा कर दिया, ठीक है जी। अब जब ये लोग जा जाके अकेले में मिले तो उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक ऐसा होगा, कब तक करेंगे ऐसा, और क्या मतलब हम क्या इसी तरह आगे चलते रहेंगे। अपनी आने वाली नस्ल को इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अब जो आने वाली नस्ल है ना, वो भी एक दूसरे से सिर्फ लड़ती झगड़ती रहेगी। और अब तो मुझे लगता है कि इक्तदार सिर्फ मुल्क ही नहीं है, घरों के अंदर भी लोग अब बड़ा बनने के लिए, इक्तदार लेने के लिए एक दूसरे को शायद बुरा कहेंगे पोलराइजेशन की वजह से और गलत और सही की वजह से। बहरहाल मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान बेहतरीन होना चाहिए और हम आवाम को एटलीस्ट आंखें खोल के रखनी चाहिए, पागलों की तरह अपने लीडर्स के पीछे आंख बंद करके चलना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों हम ये कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि जब सब कुछ हमारे लीडर बन जाते हैं ना, जैसे मैं अक्सर बेशतर एक जुमला बोलता हूँ कि इतनी अगर अल्लाह ताला की सुन लो या अपने माँ बाप की सुन लो ना, जितनी लीडर की सुनते हो, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद आपकी दुनिया और आखरत बेहतरीन हो जाए। क्योंकि माँ बाप की दुआएं आखरत भी संवारेंगी और अल्लाह ताला की बातों को मानने से आपकी दुनिया और आखरत दोनों संवरेगी। लेकिन नहीं, हम तो उस लीडर के पीछे, जो हमें जो कहता है हम वही सुनते हैं, जो हमें जो करवाता है हम वही करते हैं, और फिर वो अपने रास्ते हो जाता है, हम अपने रास्ते हो जाते हैं, हम वही ख्वार के ख्वार रहते हैं, लेकिन बन वो जाता है, क्योंकि वो उसको बातें करनी बड़ी अच्छी आती हैं, क्योंकि उसकी उसकी उसके पास हमें बेवकूफ बनाने के लिए मौके बहुत ज्यादा हैं और हम बहुत डंप हैं, हम सोचना ही नहीं चाहते। आज हमारे लीडर कहते हैं कि जी ये गलत है, तो हम सोचते हैं, देखते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा तहकीक नहीं करते, फिर हम बोलते हैं ये गलत है, फिर अगले दिन हम यही पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहां वो लीडर कहता है कि ये गलत है, अब हम वो भूल गया कि पहले हम इसको गलत कह रहे थे, अब हम इसकी पार्टी में गए तो हमें अंडरस्टूड है इसको गलत कहना है, चाहे वो सही क्यों ना हो। तो ये चीजें हमें निकालनी होंगी अपने अंदर से। हम सिर्फ और सिर्फ एक लाल बत्ती के पीछे चल रहे हैं, इस बत्ती के पीछे हमें लगाए गए और अनसीन हैंड्स हैं पाकिस्तान को चलाने वाले जो हमें नजर नहीं आते, जो किसी को नजर नहीं आते और उनके हाथों मुझे लगता है कि सब बेवकूफ बन रहे हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत ज्यादा बन रही हैं। इमरान खान साहब को लगता है कि वो सही हैं और वो सही चलते रहेंगे। तो अब देखे ना, एक और बयान में अभी कहा गया, उनका बयान क्या था बल्कि उनका एक इंटरव्यू हो रहा था खाकान अब्बासी साहब का, उन्होंने कहा कि जी हमें गोगी वाले केस से रोक दिया गया। ओ भाई किसने रोका बताओ, बताओ अवाम को किसने रोका, क्यों रोका गोगी वाले केस से? आप तो अरेस्ट कर रहे थे, क्यों नहीं किया आपने? अगर वो उन्होंने जुर्म किया है तो पकड़ के लेकर आओ, लेकिन डर, आज अगर इनको पकड़ लिया तो कल फिर अपने केसों का क्या करेंगे? डील्स हो रही हैं यहां पर, सब एक दूसरे के साथ डील्स कर रहे हैं। अभी फॉरेन फंडिंग केस में क्या होता है ये अल्लाह मियां बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस खत्म नहीं होगा और इसको जो ये चलाएंगे और इमरान खान को डैमेज करने के लिए, क्योंकि देखें ये वो पीक टाइम है इमरान खान साहब का कि अगर अभी इलेक्शन हो गए महीने दो महीने तीन महीने के अंदर तो बहुत सही है, अदरवाइज फिर इनकी चीजें इतनी चार्जशीटें खुलना शुरू जाएंगी, इनको इतना फंसाया जाएगा, इतना किया जाएगा कि फिर क्या होगा, फिर एक साल के बाद इमरान खान की पोजीशन नहीं रहेगी जो आज पोजीशन है। तो वो चाह ये रहे, अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उस हद तक लेके जाए, अगले साल इलेक्शन कराएं। इमरान खान साहब इस टाइम को कैश करना चाह रहे हैं और जो अनसीन हैंड्स हैं वो इन दोनों को लड़ा के तमाशा देख रहे हैं और पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है। हमारे पास फिर लाइन ड्रॉप हो गई है, मेरा ख्याल है हमारे फोन में शायद कोई मसला है, बंद करें इसको, हमारे फोन में शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम जी।
जी सर नाम बताएंगे सर?
जी 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 मेरा नाम मोहतरम है कि सुलेमान है
जी। सुलेमान
तो आप फरमा रहे थे कि पागलों की तरह, देखिए पागलों की तरह लगी हुई थी ना आवाम, तो आज के रिजल्ट क्या निकला, 250 रुपीस का एक जुना डॉलर।
बिल्कुल सर, बहुत बुरा हुआ।
तो अगर इसी तरह एक रहेंगे, जब श्रीलंका का 300 तक चला गया ना, तो
230 पे ना कोलैप्स कर दिया था श्रीलंका।
हाँ 230 पे किया था
जी, जी 230 पे किया।
तो ये अभी 250 पे है
बचे।
खाकान अब्बासी साहब का आप जिक्र कर रहे थे ना
जी, जी
इस बंदे की अपनी शाहीन एयरलाइन थी
जी, जी पता है मुझे, नहीं शाहीन नहीं अभी मेरे ख्याल उनकी वो चल रही है एयर ब्लू,
वो ही नाम चेंज कर दिया।
नहीं नहीं सर शाहीन किसी, सर मैं जानता हूँ शाहीन किसी और की थी, लेकिन एयर ब्लू इनकी है अभी भी है,
इन्हीं की थी। देखिए बात ये है कि जो है ना इनके पास जब पॉलिटिकल लाइन में आने से पहले क्या इनके पास थी एयरलाइन?
ना सर पैसा तो इनके बनता है पॉलिटिक्स है।
जो कराची के महापुरुष हैं
जी जी,
जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, कराची की हालत कभी देखें, जो बारिशों का पानी नहीं है कि जो है ना इनसे वो रोका जा सका। तो बात ये है कि जो है ना जो सैलाब वगैरह जो आए किसी और कहीं से पानी आए तो कैसे के ये रोक सकेंगे?
सही बात,
इनके जब जमीर अपने इन्होंने बेचने हैं तो अब सिंध का और कराची का वो हाल देख ले, सिर्फ कुछ दिन बारिशें हुई हैं, तो ये है इनकी हालत। और इनके पीछे देखिए अब अवाम भी लोग समझ गए हैं, अगर इनको वोट नहीं दे रहे
सर होगा क्या? देखें मेरा सवाल, अभी पंजाब मिल गया ओके सही है, अब देखें 11 सीटें डी सीट हो गए 11 पीटीआई के, अब क्या ये मरकज में गवर्नमेंट नहीं ला सकते? क्योंकि इनके पास अगर ये बाप भी मिल जाती है इनके साथ, जो कि बाप हिल रही थी थोड़ी सी, 11 सीटें निकलने से सर बाप इनकी बाप भी इनके पास आ जाएगी, तो ये अभी डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट को। गेम आप समझें कि हो क्या रहा है, एक तरफ देते हैं एक तरफ से ले लेते हैं, मतलब किसी कोई यहां पे भी एक ट्रैप है जो मुझे लगता है, जहां सब फंसे हुए हैं और निकल कोई भी नहीं पा रहा। आपको क्या लगता है 11 सीटें डी नोटिफाई जो हो गई हैं, डी सीट जो हो गए 11 जो इस्तीफे मंजूर हो गए, अब इमरान खान साहब की तो 11 सीटें गई?
नहीं देखे अभी वो जो इस्तीफे वगैरह दिए, लेकिन अब जो इलेक्शन की काल हो जाए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे अभी पंजाब में हुए थे ना, इन्होंने पता है क्या भाई साहब 15,000 जाली वोट डाले थे, लेकिन 75% के ऊपर एक जो है ना जब वोटिंग होगी ना तो फिर इनका जाली बंद खत्म हो गया है। जो खान साहब कहते हैं ना कि वो दूसरा वो लेकर आएंगे
सर, सर आपसे माजरत के साथ पता है क्या हो रहा है, मैं फिर ये बात बोलूंगा, अनसीन हैंड्स जो है ना वो बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो नजर नहीं आते हैं।
नहीं अब नहीं होंगे ना
सर, हो रहे हैं अभी भी, अभी देखे ना अभी 11 सीटें डी नोटिफाई जो हो गई हैं, इमरान ये फेडरल को अभी नहीं हिला पाएंगे। अच्छा अब इनके इलेक्शन होंगे, मान लेते हैं इलेक्शन होंगे, आप ये श्योरिटी से कह सकते हैं अगर उन्होंने जिता दिया नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को, फिर क्या होगा?
देखिए ये अगर जिताने की कोशिश होते ना अभी जो पंजाब में हुए थे,
सर ये दिया है, आप समझिए पिंग पोंग हो रहा है, ये दिया है इमरान खान साहब को, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा मसले हो गए थे।
तेरा वाला करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना,
चले आप जो कह रहे हैं आई होप अच्छा,
मैं भी आपको बताता हूँ, जो इनके अपने मीडिया है ना,
सब
मीडिया है इनका जिनको फंडिंग सारा कुछ होता है। अब जो सोशल मीडिया है ना, जो वो किरदार अदा कर रहे हैं, उनको किसी से कुछ लालच नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
सर सोशल सर कुछ गुज़िश्ता कुछ महीनों में, बल्कि महीने नहीं साल बोलूंगा, जब से चार महीने तो ये है इससे पहले जब से गवर्नमेंट हटी है, सर आपको पता है सोशल मीडिया पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया लोगों ने अपने वीलॉग बना बना के। कोई पहले इतने ज्यादा जो टेलीविजन पे आते थे वो वीलॉग नहीं बनाते थे सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया पे तो इतना हो गया, बहुत पैसा बन रहा है सर, सबको व्यूज चाहिए।
लेकिन सच्चाई तो लेकर आ रहे हैं
सर, इमरान खान की हिमायत में आज मैं चैनल बनाऊंगा ना, मेरे व्यूज बहुत आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कल जब नवाज शरीफ उस पर होगा ना इक्तदार में, उसके उस पर आऊंगा ना फेवर में, उसके लिए भी बहुत आएंगे।
नहीं 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 नहीं, फिर वो देखे ना, जो ऐसा को करता है ना वो पकड़ा भी जाता है ना।
चले सर, आप अपनी बात कर रहे हैं सर, एक कॉलर और है।
जो ऐसा कर रहे हैं ना वो ही सामने आ रही है, वो काली बेड़ियों की तरह के सामने आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे ना
इंशाल्लाह। सर मेरी तो दुआई है,
अब वही मीडिया वाले क्यों नहीं उधर कराची और सिंध जाते?
जी बिल्कुल,
वो दिखाने से डरते हैं ना, जो लीडर हैं, जो इनके वो जो दुबई में एक रोटीन करके बैठ गए हैं।
चले सर, मैं सर आपको फिर कॉल लेता हूँ, कॉल आई, सॉरी माजरत,
खत्म हो जाएंगे।
अल्लाह करे सर आपकी आपकी जबान मुबारक हो और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए सर, मेरी तो दुआई है। थैंक यू
मैं जी, सत्यानाश हो जाएगा
इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम आपको और आपके जो अभी पिछले कॉलर है हमारे भाई
जी, जी
इनके नाम में भूलिए, बड़ा अच्छा नाम है इनके बेचारों का। तो आप लोगों की दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं वसीम नकवी बात कर रहा हूँ
जी। वसीम भाई
आप लोगों की जी आप लोगों की गुफ्तगू मैं सुन रहा था, माशाल्लाह बिल्कुल कुछ बातें आपकी सच्चाई से ताल्लुक रखती है कि जो इस वक्त हमें पिक्चर पे नजर आ रहा है बिहाइंड द सीन, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहे काम,
बहुत कुछ मुख्तलिफ लग रहा है सर।
और इसका देखिए वही है, किसी को आगे की उसकी प्रोडक्शन करने से पहले उसका पास्ट देखा जाता है, जैसे यहाँ कोई क्रेडिट कार्ड देने से पहले उसका क्रेडिट। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे कि पिछले दिनों में जो भी वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी, जैसे कि 29 अप्रैल को समझे अदालतों का खुल जाना, उसके बाद हमजा शहबाज का वजीर आला बन जाना, हाँ। फिर हमजा शहबाज के लिए फिर जनाब अली तबोदो करना, फिर दोबारा उसका मुंतखब हो जाना, फिर उसको नॉन मुंतखब कह देना, केयर टेकर कह देना। तो अभी भी जो सूरत हाल बन रही है, और अभी आपने देखा होगा कि पीटीआई के 11 अरकान के उन्होंने इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं।
exactly.
तो वो जो आपकी बात है कि फॉरेन फंडिंग केसेस में इमरान को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक रखा हुआ हिडन वेपन है, और ये हिडन वेपन किसी भी वक्त इस्तेमाल करेंगे, चूंकि इनको पता है कि अगर इमरान को पीटीआई को अगर आजाद छोड़ दिया तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कायदे कानून यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो जाए, जिसकी की अशद जरूरत है
जी।
जिसकी हमें अशद जरूरत है, क्योंकि जो कानून में जो हमारे आइन में था, और जो दो तीन दफा की जो हुकूमतें आई हैं इन्होंने आइन में जो तब्दीली अपने लिए की, देखिए उसको तो अलाउ कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो भी उनके यानी उनके लिए जो लिमिटेशन थी उसको किसी ने टच नहीं किया। अगर आप देखिए 18वीं तरमीम को उन्होंने टच कर लिया, उसमें रद्दोबदल कर दिया, लेकिन जो
आप मुझे भाई ये बताइए वसीम भाई, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है फॉरेन फंडिंग केस में? मुझे आई डोंट नो, मेरा मुझे लग रहा है एक तरफ से देते हैं ठंडा करते हैं, दूसरी तरफ से खींच लेते हैं। पंजाब हुकूमत दी, फेडरल हुकूमत उनको देके बीच में से सीटें गायब कर दी, अब आ गया फॉरेन फंडिंग केस, अब यहाँ पे फिट करने की, अगले इलेक्शन से पहले यहाँ पे फिट करने की। और अब आप देखिएगा, ये मैं प्रेडिक्शन ही कर सकता हूँ, कुछ ही अरसे में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे, देखिएगा उनको अदालतों से रिलीफ भी मिलना शुरू होगा कुछ चीज़ों में, और उनके केस भी चलना शुरू होंगे, और वो एक कैंपेन शुरू करेंगे। जब तक नवाज शरीफ ग्रुप अपने आप को स्टैंड अप नहीं कर लेता इमरान खान के अगेंस्ट, इलेक्शन नहीं होंगे।
देखिए आपकी बात में किसी हद तक सच्चाई जरूर है, उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर एनकेएम को एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइज करने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी।
सर वो हो रही है, शॉकिंग हो गई है अल्ताफ हुसैन के लिए हैदराबाद में।
उसकी जिंदा मिसाल ये है कि आप देखें फारूक सत्तार का पिछले दिनों जो बयान आया और जो जाके पलटे हैं वो एक सबसे बड़ी सामने मौजूद है आपके।
सर वो पलटे क्यों थे, मैं भी आपको बताऊँ, मेरी थोड़ी सी नॉलेज है कराची से, मेरा ताल्लुक भी, तो मैंने ये देखा वो पलटे इसलिए थे कि जब उन्होंने जिमनी इलेक्शन के देखी चीजें तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो क्या एमक्यूएम का मलबा मुझ पर गिर जाए, तो पहले मैं सीट जीत लूं, सीट जीत के फिर एमक्यूएम में शामिल होंगे। ये आपको भी बता रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और रहा ये नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ का भी क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत बने वन थर्ड मेजोरिटी ये किसी को भी नहीं दिलवाएंगे,
कभी भी नहीं, नेवर।
हाँ, वन थर्ड मेजोरिटी का मतलब ये है कि खुद कुछ हमला कर लिया
जी।
उन लोगों ने अपने ऊपर जिन्होंने कंट्रोल करना है।
अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ वसीम भाई, मैं काफी मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एक्चुअली प्लान ये होता है, जो अनसीन हैंड होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हिडन ट्रुथ जो है हमारी कंट्री का, उसमें प्लान ये होता है कि हम सिर्फ चारों तरफ घूमते रहेंगे सर्कल में, आर्मी को लेंगे, अदलिया को बुरा करेंगे, एक पार्टी दूसरे को रही, दूसरी तीसरे को रही, छह इधर चले जाएंगे, पांच उधर चले जाएंगे, लेकिन हम बेवकूफ बनते जाएंगे और पीछे से वो अपने काम करते जा रहे हैं। आप ये नोट कीजिए जो मैंने नोट किया है,
इसमें आप सही कह रहे हैं। देखिए लेकिन एक आप देखिए हर चीज का फिर एक इलाज भी तो सोचना पड़ता है ना, ऐसा कब तक चलेगा?
मैं यही तो कह रहा था, मैंने यही बोला
कि म्यूजिकल चेयर चलेगा,
यही मैं यही बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि अभी फिलहाल जो हालात है सब अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें, ठीक है, और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए फिलहाल साइलेंट होके बैठे ताकि वो जो इधर उधर तहलका मचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, सब अपने अपने डोमेन में क्यों बैठ गए, फिर कुछ बेहतरी होगी, इलेक्शन आए, इलेक्शन लड़े और आपस में बहुत ज्यादा हो गया।
जी जी देखिए हर चीज का दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका के हल ना हो,
बिल्कुल
हर दुनिया में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बट डिस्कवरी चाहिए इसमें। जो भी आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है क्योंकि आप भी ढकी छुपी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इसमें बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका और जो अनबीटेबल है वो है कौम का यकजा हो जाना।
एग्जैक्टली
कौम एक मरतबा यकजा हो जाए तो आप देखें चाहे वो श्रीलंका, आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है, आपके सामने बहुत सारे ऐसे ममालिक की मिसाल मौजूद है, एक तवील लिस्ट है कि जहां लोग तंग आकर के एक कॉर्नर होके जहां पर एक कौम बन जाना है। एक कौम उसी सूरत में बन सकते हैं कि जब लोग अपनी अपनी जायज और नाजायज मफादात अपने सियासी रहबरों से सियासी मफादात को साइड में रख दें।
चले थैंक यू वसीम भाई, हमारा टाइम खत्म हो गया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेरी बहुत अच्छी आपने बातें की। हम भी ये चाहेंगे हम कौम बन जाएं, हजूम ना बने जो कि हम हैं अभी, तो थैंक यू अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वसीम साहब हमारे साथ, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास दो मिनट रह गए, तो हम आखिरी एक और दफा अपने स्पॉन्सर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज, ये एक सिक्योरिटी कंपनी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और वो कमर्शियल हो, रिहायशी हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रांसपोर्टेशन यार्ड ही क्यों ना, तो अब आपकी सिक्योरिटी डबल या ट्रिपल होगी क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। 647-987-0002 सिक्योरिटी गार्ड बनना अब बहुत ही आसान है। अगर आपको जॉब चाहिए सिक्योरिटी गार्ड बनना है तो आप अभी इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपनी अगर आप लाइसेंस लिए हुए तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं भी लिया तो आप को लाइसेंस की तैयारी करा के आपको लाइसेंस दिलवाएंगे और आपको जॉब देंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे और वो निकालते भी नहीं है, तो आप जाएं उनसे जॉब भी लें और अभी अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उसकी डेट बुक कराएं और कॉल कर सकते हैं 647-987-0002 जो कि मार्कम में अच्छा बेहतरीन पिज्ज़ा है, बेहतरीन टॉपिंग है, हलाल पिज्ज़ा है, और सिर्फ पिज्ज़ा ही नहीं है, बर्गर भी हैं, फ्राइज भी हैं और इनके पास विंग्स भी हैं और बटर चिकन पिज्ज़ा तो इनका बहुत ही कमाल है। तो आप कॉल कर सकते हैं 9055547886 और अगर आप थॉर्नक्लिफ में हैं तो फिर आप जाइए अजवा पिज्ज़ा, अजवा पिज्ज़ा बेहतरीन ज़बरदस्त, 416-423-2792 और जरूर जाइए, उनको बताइए, वहां अजमल भाई होंगे, उनको बोलिएगा कि जी हमने रेडियो प्रोग्राम में सुना तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन, शादी ब्याह की वीडियो बनती रहती हैं आपको पता है, जो कि वीडियो बनाते हैं, लेकिन वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन शादी ब्याह की वीडियो नहीं बनाते बल्कि वो उस वीडियो को डायरेक्ट करते हैं और ड्रामाटाइज और फिल्म के स्टाइल में आपको वीडियो बना के देते हैं। तो अगर आपकी शादी की वीडियो बनानी हो या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करानी हो तो वेंटेज वीडियो को ही याद रखिए। कॉल कीजिए 7457744104, नंबर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 6474554104। और अगर आपको एक्टर या मॉडल बनना है और आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो भी वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन से आप बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया टीवी कमर्शियल भी आप उनसे करवा सकते हैं और फंड रेजिंग कैंपेन भी, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा।